यूनिट सेकंड पाठ 9 समन्वय एवं विकास अभिवृद्धि कोऑर्डिनेशन एंड ग्रोथ डेवलपमेंट प्रबंधन में समन्वय एवं विकास अभिवृद्धि। शैक्षिक प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया है, इसमें देश की आवश्यकता, संसाधन, मानव शक्ति, नियोजन आदि निहित होती है। प्रबंधन के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए हेनरी फ्योल ने कहा है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। टेलर के शब्दों में वैज्ञानिक प्रबंधन की आधारभूत सिद्धांत हमारे साधारण से साधारण व्यक्तिगत कार्यों को लेकर हमारे विशाल नियमों के कार्यों तक लागू होते हैं। इस दृष्टि से शैक्षिक प्रबंधन के 9 क्षेत्र हैं। पहला, उत्पादन प्रबंधन। इसके अंतर्गत उत्तम शैक्षिक उपलब्धि को दृष्टिगत रखा जाता है। दूसरा, वित्तीय प्रबंधन। शिक्षा संस्थाओं के संचालन के लिए वित्तीय प्रबंधन किया जाता है। तीसरा, विकास प्रबंधन। विद्यालयों को प्रोन्नत करने के लिए विकास की व्यवस्था की जाती है। चौथा, वितरण प्रबंधन। विद्यालयी संसाधनों का वितरण किया जाता है। पांचवा, क्रय प्रबंधन। विद्यालयों में सामान्य क्रय करने का प्रबंध किया जाता है। छठवां, परिवहन प्रबंधन। विद्यालय में सामान छात्रों स्टाफ को ले जाने की व्यवस्था की जाती है। सातवां, संस्थापन प्रबंधन। संस्था के भवन, उपकरण, अन्य साधनों का प्रबंधन किया जाता है। आठवां, सेवी वर्गीय प्रबंधन। शिक्षक, कर्मचारी आदि की व्यवस्था, पद एवं भूमिका का निर्धारण किया जाता है। नौवां, कार्यालय प्रबंधन। प्रत्येक विद्यालय में आलेख की व्यवस्था करने के लिए कार्यालय होते हैं जिसके प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन की प्रमुख 5 घटक निम्नलिखित हैं, नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन, नियंत्रण। प्रबंधन में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन में प्राचार्य के कार्यों का क्षेत्र अधिक व्यापक है। उपरोक्त पंक्तियों में विद्यालय प्रबंधन के घटक तथा क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इनमें से अधिकांश पक्षों का उल्लेख तथा विवरण पिछले अध्यायों में किया जा चुका है। इनमें से प्राचार्य की सबसे अहम भूमिका तथा उत्तरदायित्व प्रबंधन में समन्वय स्थापित करना होता है, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत विविध प्रकार के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है और विभिन्न क्रियाएं होती हैं जिसमें समन्वय होना आवश्यक होता है। यह कार्य भी प्रधानाचार्य को करना होता है। विद्यालय के प्रबंधन में प्राचार्य के समन्वय की भूमिका का निवारण निम्नांकित पंक्तियों में किया गया है। समन्वय का अर्थ, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रबंधन की प्रक्रिया में विभिन्न व्यक्तियों, पारस्परिक संबंधों तथा क्रियाओं में समन्वय होने से प्रभावशालीता बढ़ती है और विद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति भी सुगमता से होती है। प्रशासक को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक शक्तियों का सदुपयोग करना होता है और विद्यालय की विविध क्रियाओं को एक ही दशा में उन्मुख करना होता है। इसलिए समन्वय की प्रक्रिया विद्यालय की कार्यशीलता के लिए आवश्यक है जिससे विद्यालय की सभी स्रोतों एवं शक्तियों का समन्वित रूप से उपयोग हो सके। इसके लिए प्राचार्य को अधिक प्रयास करने होते हैं। प्रशासन के सभी क्षेत्रों में परस्पर समन्वय होना आवश्यक है। इतना ही नहीं बल्कि प्रबंधन के नियोजन, व्यवस्था, प्रशासन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण पक्षों में भी समन्वय की आवश्यकता होती है। प्राचार्य को शैक्षिक, प्रशासनिक, नीतियों, अध्यादेशों, वित्तीय प्रबंधन आदि क्रियाओं में भी समन्वय की आवश्यकता होती है। विद्यालय प्रबंधन का समन्वय विशिष्ट संस्थाओं, परिस्थितियों, उपलब्ध स्रोतों तथा लक्ष्यों पर आधारित होता है। इसके लिए प्राचार्य के विशिष्ट क्षमताओं, दक्षताओं, कुशलताओं एवं योग्यताओं की आवश्यकता होती है जिससे वह विविध प्रकार के व्यक्तियों एवं समूहों में अच्छे संबंध स्थापित कर सके। प्राचार्य को विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त राज्य स्तर, जिला स्तर एवं समुदाय के अधिकारियों एवं व्यक्तियों से भी समन्वय स्थापित करना होता है। विद्यालय शिक्षा के समन्वय के क्षेत्र, स्कोप ऑफ कोऑर्डिनेशन इन स्कूल एजुकेशन। उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि विद्यालय प्रबंधन में समन्वय का क्षेत्र अधिक व्यापक है, फिर भी इन्हें अध्ययन की दृष्टि से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। वह क्षेत्र इस प्रकार है, पहला शैक्षिक क्रियाओं में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन करिकुलर एक्टिविटीज। दूसरा, पाठ सहगामी क्रियाओं में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज। तथा तीसरा, प्रशासनिक क्रियाओं में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। इन क्षेत्रों में समन्वय का विवरण निम्नलिखित पंक्तियों में दिया गया है। शैक्षिक क्रियाओं में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन करिकुलर एक्टिविटीज। इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य शिक्षण अधिगम की व्यवस्था करना है। इसके लिए विद्यालय के प्राचार्य को शिक्षकों तथा छात्रों के पारस्परिक क्रियाओं में समन्वय करना होता है। शैक्षिक क्रियाओं के अंतर्गत शिक्षण और परीक्षण की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण के साथ परीक्षण की क्रिया भी आवश्यक होती है। तभी शैक्षिक क्रियाओं को पूर्ण माना जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख क्रिया विद्यालय की समय तालिका बनाने की होती है। समय तालिका इस प्रकार बनाई जाए जिससे शिक्षकों को आपस में कोई समस्या या कठिनाई न हो। इसके उपरांत शिक्षकों की अनुपस्थिति में अन्य शिक्षकों को कार्यभार संभालना चाहिए। शिक्षकों की अनुपस्थिति में कक्षा मॉनिटर भी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का उत्तरदायी होता है। इतना ही नहीं, प्राचार्य की अनुपस्थिति में वरिष्ठ शिक्षक को विद्यालय के संचालन का कार्यभार संभालना चाहिए। शिक्षण के अतिरिक्त परीक्षण की क्रियाओं में शिक्षकों में परस्पर समन्वय रखने के लिए प्राचार्य को वरिष्ठता सूची के अनुसार कार्यभार दिया जाए। परीक्षा में कक्षा निरीक्षकों को कार्यभार भी समान रूप से दिया जाए। समन्वय के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों को कार्यभार उनकी वरिष्ठता, कुशलता एवं विषय योग्यता के अनुसार दिया जाए। दूसरा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में समन्वय, कोऑर्डिनेशन को करिकुलर एक्टिविटीज। शैक्षिक क्रियाओं के अतिरिक्त विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन किया जाता है। इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी विविध प्रकार की होती हैं, जैसे खेल कूद, स्काउट गाइडिंग, एनसीसी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाक प्रतियोगिता, शैक्षिक पर्यटन, धार्मिक एवं राष्ट्रीय पर्व, विद्यालय स्थापना दिवस, छात्रावास प्रबंधन आदि। इन क्रियाओं का उत्तरदायित्व प्राचार्य द्वारा शिक्षकों को भी सौंपा जाता है। इसके लिए शिक्षकों को उनकी इच्छा और योग्यता अनुसार कार्य दिए जाए जिससे वह उनमें रुचि पूर्वक कार्य कर सके। कुछ ही शिक्षकों को इस तरह के कार्य वितरण में महत्व दिया न जाए। ऐसा करने से कार्य में प्रभावशीलता नहीं होगी और अन्य शिक्षकों का सहयोग भी नहीं प्राप्त हो सकेगा। इसलिए प्रधानाचार्य को उत्तरदायित्व को सौंपते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। पाठ सहगामी क्रियाओं में उन्हीं छात्रों को सम्मिलित किया जाए जो उनमें रुचि रखते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में छात्रों को अनिवार्य रूप से भाग लेने को न कहा जाए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को जिन शिक्षकों को सौंपा गया है उनका भी यह उत्तरदायित्व होता है कि वह उस समूह के छात्रों में अच्छे संबंध एवं समन्वय करने का प्रयास करे। शिक्षक को सभी छात्रों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। कुछ भी छात्रों को महत्व देने से छात्रों में अच्छे संबंध नहीं रह पाते। इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से छात्रों में विरोधी समूह बन जाते हैं और क्रियाओं में समन्वय नहीं रहता। पाठ्य सहगामी क्रियाओं प्रजातांत्रिक मूल्यों को महत्व देना चाहिए। इसके लिए प्राचार्य को समय समय पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का पर्यवेक्षण करना चाहिए। तीसरा, प्रशासनिक क्रियाओं में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में समन्वय के अतिरिक्त प्राचार्य को विद्यालय संचालन में अन्य प्रबंधन के पक्षों के व्यक्तियों से समन्वय करना होता है, जैसे प्रबंध समिति की बैठकों, निर्णयों, आदेशों के अनुपालन में समन्वय की आवश्यकता होती है। यदि प्राचार्य के प्रबंध समिति से अच्छे संबंध हैं, तो प्रबंध समिति क्रियाओं में समन्वय सुगमता से किए जा सकते हैं। इसी प्रकार प्राचार्य को जिला स्तर तथा राज्य स्तर के शिक्षा विभाग से भी समन्वय की आवश्यकता होती है, क्योंकि विद्यालय के संचालन में शिक्षा विभाग के नियमों, परिनियमावली तथा अध्यादेशों का अनुपालन करना होता है। वित्तीय अनुदान तथा मान्यता के लिए जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों से ही संपर्क करना होता है। इसलिए प्राचार्य को शैक्षिक और सहायक क्रियाओं के समन्वय के साथ अधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि वह शिक्षा के उच्च अधिकारियों से अपना समन्वय स्थापित करें, तभी विद्यालय का विकास और संचालन सुगमता से हो सकता है। प्रबंधन के समन्वय पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। प्रबंधन के क्रियान्वयन में प्राचार्य की तीन पक्ष, पहला भूमिका, दूसरा संबंध एवं तीसरा समन्वय में निकट का संबंध है। किन्हीं परिस्थितियों में इनमें अंतर करना कठिन लगता है, अर्थात इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर लेते हैं, परंतु यहाँ तक नियंत्रण का विषय है। इसमें भूमिका तथा संबंधों का नियंत्रण संबंध नहीं है, जबकि प्रबंधन में समन्वय का नियंत्रण आवश्यक होता है। इस तथ्य को स्पष्ट करना आवश्यक है, जैसे प्राचार्य की भूमिका एक प्रशासक की होती है और उसे अपने शिक्षकों व छात्रों से विशेष प्रकार के संबंध रखने होते हैं, परंतु इन संबंधों के लिए प्राचार्य को यह अवश्य ध्यान रखना होता है कि उनमें आपस में कोई विरोध उत्पन्न न हो सके। इसलिए अपनी क्रियाओं में समन्वय पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यदि प्राचार्य किन्हीं विशेष शिक्षकों से बहुत अच्छा व्यवहार एवं संबंध रखता है, तो यह स्वाभाविक है कि अन्य शिक्षकों को यह अच्छा नहीं लगे और उनमें विरोध की भावना आ जाएगी। इसलिए भूमिका निर्वहन एवं संबंध रखने के साथ प्राचार्य को समन्वय पर नियंत्रण को भी ध्यान रखना होगा, तभी वह एक अच्छा प्रशासक हो सकता है। समन्वय पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि विद्यालय की सभी क्रियाएं परस्पर जुड़ी हुई हैं। इन क्रियाओं के संचालन के लिए सभी को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। उदाहरण, पाठ्य सहगामी क्रियाओं वाला शिक्षक छात्रों का अधिक समय लेता है, तो छात्र की पाठ्यक्रम की क्रियाएं प्रभावित होगी। यह भी हो सकता है कि अंतिम परीक्षा में छात्र अच्छे अंक न प्राप्त कर सके। इसी प्रकार कक्षा शिक्षण में यदि सभी शिक्षक छात्रों को अधिक से गृह कार्य देने का प्रयास करते हैं, तो छात्र उन्हें संभवतः पूर्ण न कर सकेंगे, जबकि कुछ विषयों के गृह कार्य में विशेष महत्व होता है, जैसे गणित एवं भाषा। इसलिए शिक्षकों को गृह कार्य देने में समन्वय करना होगा कि तभी छात्रों के लिए यह हितकर हो सकता है। प्रधानाचार्य को विद्यालय की क्रियाओं, प्रबंधन समिति की क्रियाओं, समुदाय की क्रियाओं तथा शिक्षा विभाग की क्रियाओं में समन्वय रखना होगा और उन पर नियंत्रण करना भी आवश्यक है। यदि प्राचार्य प्रबंधन समिति की क्रियाओं की अधिक समय देगा तो विद्यालय के कार्य प्रभावित होंगे। इसी प्रकार यदि वह समुदाय की क्रियाओं में अधिक समय देगा और उनमें रुचि लेगा तब भी विद्यालय की क्रियाएं प्रभावित होंगी। प्राचार्य को अधिक समय विद्यालय में देने से विद्यालय की क्रियाएं प्रभावशाली रहती हैं। उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। इसलिए प्राचार्य को अपनी विविध क्रियाओं एवं संबंधों में समन्वय के साथ साथ उन पर नियंत्रण भी रखना आवश्यक है। समन्वय पर नियंत्रण से विद्यालय की समय सारणी भली प्रकार संपादित हो सकती है और विद्यालय के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, जिससे विद्यालय का विकास भी संभव हो सकता है। समन्वय के कारण फैक्टर ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय संबंधी कारकों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। समन्वय के तीन कारक निम्नलिखित हैं। पहला, विद्यालय के कार्यक्रमों से संबंधित पक्ष, जैसे शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक तथा पाठ्यक्रम। विद्यालय शिक्षा में शिक्षक, छात्रों, अभिभावकों तथा पाठ्यक्रम सभी क्रियाओं में समन्वय की आवश्यकता होती है। दूसरा, समन्वय के साधन। विद्यालय की क्रियाओं में समन्वय का मुख्य साधन विद्यालय की परंपराएं, नियमावली तथा अध्यादेश होते हैं। विद्यालय शिक्षा की क्रियाओं में समन्वय के लिए प्राचार्य को परंपराओं, नियमों तथा अध्यादेशों का अनुपालन करना होता है अथवा उनके आधार पर समन्वय किया जा सकता है। प्राचार्य को समन्वय पर नियंत्रण करने में नियमों, परंपराओं एवं अध्यादेशों की आवश्यकता होती है। तीसरा, विद्यालय का वातावरण एवं समन्वय की क्षमता। विद्यालय में प्राचार्य एक प्रशासक के रूप में कार्य करता है, इसलिए विद्यालयों की क्रियाओं में समन्वय के लिए वह अपने अधिकारों का प्रयोग करता है और यह मैंने विद्यालय के हित में दिया है और विद्यालय के हित में ऐसा ही करना होगा। यहाँ विद्यालय के समन्वय नहीं हो पाता है, इस परिस्थिति में प्राचार्य अपने अधिकारों का उपयोग करता है और अधिकारों से समन्वय करने का प्रयास करता है। समन्वय की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रबंधन की मुख्य पांच अवस्थाएं अथवा प्रक्रियाएं होती हैं। इन्हीं पांचों प्रक्रियाओं की अवस्था अनुसार समन्वय की आवश्यकता होती है, तभी प्रबंधन एवं प्रभावशाली होता है। समन्वय की पांच अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहला, नियोजन की अवस्था में समन्वय। दूसरा, व्यवस्था अथवा संगठन की अवस्था में समन्वय। तीसरा, प्रशासन की अवस्था में समन्वय। चौथा, पर्यवेक्षण की अवस्था में समन्वय तथा पांचवा, नियंत्रण या मूल्यांकन की अवस्था में समन्वय। इन समन्वय की अवस्थाओं का विवरण निम्नलिखित पंक्तियों में दिया गया है। पहला, नियोजन की अवस्था में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग स्टेज। प्रबंधन की आरंभिक प्रक्रिया नियोजन की होती है। इसके अंतर्गत संस्था की सभी प्रबंधन क्रियाओं का उद्देश्य की दृष्टि से निर्धारण करना होता है। नियोजन की प्रक्रिया सूझबूझ, अनुभवों तथा तार्किक शक्तियों पर निर्भर होती है। इसमें भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों तथा क्रियाओं का प्रारूप विकसित किया जाता है। समन्वय की आवश्यकता क्रियाओं के संपादन अथवा क्रियान्वयन में होती है, इसलिए भूमिका, क्रियाओं, संबंधों तथा उत्तरदायित्वों के प्रारूप का नियोजन करते समय उन्होंने समन्वय की प्रक्रिया को महत्व दिया है। समन्वय को ध्यान में रखने में व्यवस्था की प्रक्रिया तथा प्रशासन में प्राचार्य को कठिनाई नहीं होगी। दूसरा, व्यवस्था अथवा संगठन की अवस्था में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन स्टेज। किसी प्रबंधन के संगठन को बनाए रखने में समन्वय को विशेष महत्व होता है। व्यवस्था को संपादित करने में क्रियाओं में समन्वय की आवश्यकता होती है। समन्वय न होने पर व्यवस्था खंडित होने की अधिक संभावना रहती है। व्यवस्था की प्रक्रिया को प्रभावशीलता समन्वय पर निर्भर होती है। तीसरा, प्रशासन की प्रक्रिया की अवस्था में समन्वय, कोऑर्डिनेशन एट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेज। प्रशासन की अवस्था में सभी क्रियाओं का संपादन किया जाता है। नियोजन अथवा व्यवस्थित क्रियाओं का व्यावहारिक रूप में क्रियान्वयन प्राचार्य द्वारा किया जाता है। इस अवस्था में समन्वय के अभाव में कठिनाइयां तथा समस्याएं होती हैं। शिक्षकों में समायोजन नहीं हो पाता। इस अवस्था में क्रियाओं तथा अनुभवों से ही अशुद्ध ज्ञान होता है। यहाँ तक प्रबंधन के प्रारूप में भी प्राचार्य परिवर्तन करता है। चौथा, पर्यवेक्षण की प्रक्रिया की अवस्था में समन्वय, कोऑर्डिनेशन एट सुपरविजन स्टेज। आधुनिक समय में पर्यवेक्षण का प्रत्यय बदल चुका है। पर्यवेक्षण का अर्थ है क्रियाओं का सुधार एवं विकास करना और प्राचार्य द्वारा शिक्षकों तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना तथा सुधार हेतु सुझाव देना। पर्यवेक्षण में प्राचार्य को नेतृत्व भूमिका का निर्वहन करना होता है। पर्यवेक्षण के माध्यम से क्रियाओं के समन्वय का अवलोकन करता है। समन्वय की सूक्ष्मताओं को बोध प्राचार्य को होता है और समन्वय की क्रियाओं को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। पांचवा, नियंत्रण की अवस्था में समन्वय, कोऑर्डिनेशन एट कंट्रोलिंग स्टेज। नियंत्रण की प्रक्रिया में परीक्षण कार्य को सम्मिलित किया जाता है। परीक्षण प्रणाली की विविध क्रियाओं में समन्वय की विशेष आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त परीक्षण का शिक्षण के साथ समन्वय होना भी विशेष महत्व रखता है। जिस प्रकार विद्यालय में शिक्षण किया जाए उसी प्रकार की परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षण शिक्षण पर आधारित होना चाहिए। जब कभी ऐसा नहीं होता तब छात्र परीक्षा भाव में समस्या उत्पन्न करते हैं और उनका नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार प्रबंधन में समन्वय की क्रियाएं समस्याओं से बचाव करती हैं और कठिनाइयों एवं समस्याओं का समाधान तथा सुधार करती हैं। प्रबंधन में समन्वय की क्रिया हेतु सुझाव सजेशंस फॉर कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। विद्यालय की शिक्षा में प्राचार्य की समन्वय क्रिया महत्वपूर्ण तथा सार्थक होती है। इसका स्वरूप व्यावहारिक अधिक है, इसलिए प्राचार्य को समन्वय की क्रिया में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कोई प्रशासन अपने प्रबंध तंत्र में सभी को प्रसन्न नहीं रख सकता क्योंकि उसे निर्णय लेने होते हैं। निर्णय सभी के हित में नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में प्राचार्य को अपना अधिकार प्रदर्शित नहीं करना चाहिए अपितु नियमों परिनियमावली तथा अध्यादेश आदि का सहारा लेना चाहिए, अपनी विवेकता प्रदर्शित करनी चाहिए। दूसरा, प्राचार्य को अपनी कार्यों तथा उत्तरदायित्व निर्वहन में सकारात्मक तथा प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समस्याओं को वस्तुनिष्ठ व निष्पक्ष रूप से समझकर निर्णय लेना चाहिए। प्रभावित व्यक्तियों को भी निर्णय में सम्मिलित किया जा सकता है। तीसरा, समन्वय की क्रिया में बचाव तथा सुधार को महत्व देना चाहिए। निदान करके क्रियाओं में व्यावहारिक समन्वय को महत्व देना चाहिए। चौथा, विद्यालय शिक्षा में समन्वय के अभाव से शिक्षकों तथा कर्मचारियों में समायोजन नहीं हो पाता है। पांचवा, प्राचार्य के लिए समन्वय की क्रिया एक चुनौती होती है, इसलिए अपने अनुभवों तथा विवेक से इस कार्य को करना चाहिए। अभिवृद्धि एवं विकास का प्रत्यय कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वर्तमान काल में बाल केंद्रित शिक्षा की पृष्ठभूमि में इन दोनों शब्दों का पर्याप्त उपयोग हो रहा है। बच्चे के विकास के सभी पक्षों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि में वृद्धि का विश्लेषण करना वर्तमान काल की मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा का एक आवश्यक अंग बन गया है। अतः इन दोनों शब्दों अर्थात वृद्धि का विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझना आवश्यक हो जाता है। अभिवृद्धि का अर्थ मीनिंग ऑफ ग्रोथ। वृद्धि और विकास शब्दों को कई बार पर्यायवाची रूप में प्रयोग कर लिया जाता है क्योंकि इन दोनों शब्दों का संबंध गर्भधान के समय से लेकर मानव में आए परिवर्तनों की व्याख्या करने से होता है। इन परिवर्तनों में शिक्षा एवं वातावरण का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। इन दोनों शब्दों का प्रयोग सीखने से संबंधित व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या की जाती है। वृद्धि शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शरीर आकार, भार आदि में वृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। इस वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियां और शरीर की साधारण वृद्धि भी शामिल होती है। इस प्रकार की वृद्धि की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसका मापन किया जा सकता है तथा इसका आकलन भी किया जा सकता है। विकास का अर्थ एवं प्रकृति मीनिंग ऑफ एंड नेचर एंड डेवलपमेंट। आज के युग में ज्ञान विज्ञान के विकसित होने के कारण मानव विकास को लिपिबद्ध कर लिया जाता है। मानव विकास के इतिहास में ज्ञान विज्ञान की अनेक नई शाखाओं का विकास हुआ है। मनोविज्ञान भी व्यक्ति के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक के विकास तक के अनेक नवीन पहलुओं को प्रस्तुत करता है जिससे नवीन उपलब्धियां होती हैं। एस ई टेलर ने कहा है, मनुष्य में जो कुछ वह अभी है उसमें बदल रही है और एक ही समय में शैली क्या होगी या पहली शैली तथा उस व्यक्ति पर उसके वर्तमान वातावरण द्वारा डाले गए प्रभावों पर निर्भर है। साथ ही यह उसकी अपनी अनुक्रियाओं पर भी निर्भर है, उन बातों के प्रति जो भी पहले हो चुकी हैं तथा उन प्रभावों के प्रति भी जो अब उस पर पड़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमा तक क्रमिक अवस्थाओं में अपनी जीवन शैली का निर्माण अपनी पसंद तथा निर्णयों द्वारा करता है। एक बार चुनाव हो जाने पर तथा उस चुनाव का प्रभाव विकसित हो रहे ढांचे पर पड़ चुकने के बाद वह कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। विकास एक मार्ग या वन वे पथ है। गर्भधान से लेकर जन्म तक व्यक्ति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिन्हें भ्रूणावस्था का शारीरिक विकास माना जाता है। जन्म के बाद वह कुछ विशिष्ट लक्षण उसमें प्रकट होने लगते हैं। विकास का यह क्रम वातावरण से प्रभावित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह सफलता प्राप्त करने के लिए बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करे। इन अवस्थाओं के कारण बालक में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार वह अपनी कार्य प्रणाली को विकसित कर सकता है। व्यक्ति का जन्म, विकास तथा मृत्यु सदैव ही मानव के अध्ययन के लिए जिज्ञासा बने रहे हैं। विकास का अध्ययन मानव व्यवहार की पूर्णता को जानने के लिए होने लगा है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। आज व्यक्ति के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनेक नवीन पहलुओं का अध्ययन करने के लिए आवश्यक हो गया है। व्यक्ति के विकास से अभिप्राय उस के गर्भ में आने से लेकर प्रौढ़ता प्राप्त होने तक की स्थिति से है। पितृ सूत्र स्पर्म तथा मातृ सूत्र ओवम के संयोग से जीव स्थित होता है। जब तक भ्रूण गर्भ से बाहर नहीं आता वह गर्भ स्थित काल पेरेंटल पीरियड कहलाती है। 9 कैलेंडर मास एवं 10 या 12 दिन अथवा 10 चंद्र मास ल्यूनर मंथ या 280 दिन तक भ्रूण गर्भ में रहता है और वहां उसका विकास होता रहता है। इस अवधि में उसके शरीर के अंगों का विकास होता है। जब भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाता है तब वह गर्भ में नहीं रह पाता और उसे बाहर आना पड़ता है। गर्भ से बाहर आने पर उसके विकास का नया दौर आरंभ होता है। इसे गर्भोत्तर पोस्ट नेटल स्थिति कहते हैं। मुनरो ने ऐसे विकास की परिभाषा देते हुए कहा है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, वह विकास कहलाता है। विकास का अर्थ बड़े होने या कद एवं भार के बढ़ने से नहीं है, विकास में परिपक्वता की ओर बढ़ने का निश्चित क्रम होता है। यह एक प्रगतिशील श्रृंखला होती है। प्रगति का अर्थ भी दिशाबोध युक्त होता है या दिशाबोध आगे भी होता है और पीछे भी। निश्चित क्रम से अभिप्राय है कि विकास में व्यवस्था रहती है। प्रत्येक प्रकार का परिवर्तन इस बात पर आधारित होता है कि वह किस प्रकार क्रम का निर्धारण करता है। गैसल के अनुसार विकास सामान्य प्रत्यय से अधिक महत्व की चीज है। विकास का अवलोकन किया जा सकता है एवं किसी सीमा तक इसका मूल्यांकन एवं मापन भी किया जा सकता है। इसका मापन तथा मूल्यांकन तीन रूपों में हो सकता है, अ शरीर निर्माण यानी कि एनाटॉमी, ब शरीर शास्त्रीय, स व्यवहारिक व्यवहार चिन्ह यानी कि बिहेवियर साइंस। विकास के स्तर एवं शक्तियों की विस्तृत रचना करते हैं। विकास का अर्थ मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास का अर्थ परिवर्तन है। परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो हर समय चलती रहती है, अतः प्रत्येक क्षण विकास भी हो रहा है। हर्डलॉक के अनुसार विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित तथा समयानुसार प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। विकास चिंतन का मूल है। यह एक बहुमुखी क्रिया है और इसमें केवल शरीर के अंगों का विकास ही नहीं प्रत्युत सामाजिक सांवेगिक अवस्थाओं में होने वाली परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसी के अंतर्गत शक्तियों और क्षमताओं के विकास को भी गिना जाता है। हेनरी सीशल विल्ड ने विकास को इस प्रकार परिभाषित किया है, विकास के कारण और उसकी प्रक्रिया में निहित प्रक्रिया। दूसरा, मानव मस्तिष्क में सभ्यता की प्राणी के जीवन के विकास की अवस्था या विकास की वह प्रक्रिया जो अभिवृद्धि प्रसार आदि में योग देने की स्थिति में हो। तीसरा, विकास की प्रक्रिया का परिणाम जो अनेक कारण दशाएं वर्ग भेद आदि सामाजिक समस्याओं के रूप में प्रकट होते हैं। इसी प्रकार जेम्स ड्रेवर ने विकास की परिभाषा दी है, विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप में नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मानदंड है और इसका आरंभ शून्य से होता है। विकास का अध्ययन स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। पहला, प्राचीन से आधुनिक काल तक। आज विज्ञान में विकास के साथ साथ बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वेदों में भी बाल विकास पर विशेष ऋचाएं मिलती हैं। हे प्रिय बालक, तेरा मन वाणी प्राण नेत्र स्रोत सुविकसित हो, दिन रात तुझे शांति दे और माता पिता सुरक्षा प्रदान करते रहें। 400 वर्ष पूर्व प्लेटो ने बालक के विकास तथा प्रशिक्षण पर बल दिया था। प्लेटो का विचार था कि शिशु में व्यक्तिगतता भिन्नता पाई जाती है और प्रशिक्षण पर बल दिया था। जॉन लॉक ने 17वीं शताब्दी में बालक के विकास पर बल देते हुए उनकी सहज प्रवृत्तियों तथा आदतों के विकास पर बल दिया था। रूसो ने प्रकृति की ओर चलो बैक टू नेचर का नारा लगाया और प्रगतिशील की योजना में एमिल एवं सोफी नामक पात्रों के माध्यम से बालक के विकास की प्रक्रिया को सुझाया। इस प्रकार हर्डलॉक ने बाल विकास एवं विकासात्मक मनोविज्ञान नामक पुस्तकों में बाल विकास के अध्ययनों विचारधाराओं एवं प्रक्रिया पर विवेचन किया है। दूसरा, जीव शास्त्रीय पक्ष। बाल विकास के जीव शास्त्रीय अध्ययन का आरंभ डार्विन के प्राकृतिक उद्विकास नेचुरल इवेल्युएशन एवं अस्तित्व के लिए संघर्ष यानी कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से हुआ। इसी प्रकार मेंडल ने चूहों कबूतरों मुर्गी के चूजों पर प्रयोग करके बाल विकास के महत्वपूर्ण पक्ष वंशानुक्रम तथा वातावरण की नवीन उद्भावनाएं प्रकाशित की। पावलव ने कुत्तों पर प्रयोग करके अनुकूलित अनुक्रिया यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स पर प्रकाश डाला। शिशुओं में सांवेगिक दशाओं का अध्ययन करने के लिए वाटसन ने अनेक प्रयोग किए। तीसरा, जीवन वृत्त। जीवन वृत्त बायोग्राफिक्स के द्वारा भी बाल विकास का अध्ययन किया गया। 18वीं शताब्दी में टीडमैन ने 150 वर्ष तक के बालकों के शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास का अध्ययन किया। शिशुओं के अनेक जीवन वृत्त 20वीं शताब्दी में प्रकाशित हुए। यद्यपि ये जीवन वृत्त आधिकारिक नहीं है, किंतु बाल विकास के अध्ययन में ये सहायक हुए हैं। चौथा, प्रयोग द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होने से प्रयोगात्मक तथा निरीक्षणात्मक अध्ययनों का विकास हुआ। जी स्टेनल हॉल ने बाल विकास के क्षेत्र में प्रयोगात्मक दिशा प्रदान की है। कोकलिन, ग्रैसल, गोडार्ड, कुलहमैन, मतीर एवं टर्मल ने मानव विकास के अध्ययन हेतु अनेक विधियों तथा प्रणालियों का आविष्कार किया है। हल ने किशोरों के अध्ययन संबंधी 2 प्रतिवेदनों में बाल विकास संबंधी नवीन विचारधारा स्थापित की है। बिने ने बालकों के मनोवैज्ञानिक विकास के अध्ययन में कीर्तिमान स्थापित किया है। इसने साइमन के साथ मिलकर अनेक बुद्धि परीक्षणों की रचना की है। आज विश्व भर में अनेक विद्वान तथा अनेक संस्थाएं बाल विकास के अध्ययन में लगी हैं। इनके द्वारा किए गए अध्ययनों के परिणाम से अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं और बालकों के व्यक्तिगत एवं विकास किया गया है। भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस दिशा में कार्य कर रहा है। अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बालक के विकास का स्वरूप 2 सामान्य कारकों से प्रभावित होता है। पहला, बालक के पिता के पितृ सूत्र यानी कि जर्म सेल्स की रचना तथा वंशाक्रम। दूसरा, गर्भ स्थिति के बाद पड़ने वाले प्रभाव। जैविक वंशाक्रम तथा सामाजिक वंशाक्रम की प्रक्रिया में अनेक छोटे मोटे कारक प्रतिकारक विद्यमान रहते हैं। पितृ सूत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों से बालक की विकास प्रक्रिया प्रभावित होती है। विकास के जैविक स्वरूप की व्याख्या जीवन प्रारूप लाइफ पैटर्न के संदर्भ में सभी अवस्थाओं में की जानी चाहिए। विकास सर्वांगीण पक्ष यानी कि ऑल राउंड एस्पेक्ट को लेकर चलता है। इसमें किसी एक पहलू का अध्ययन पृथक रूप से नहीं किया जा सकता। पहला, विकास का परिपक्वता से संबंध। अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता मैच्योरेशन से है। विकास वातावरण से भी संबंधित है। एक अन्य विचार यह भी है कि विकास प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तन का योग है, जबकि अभिवृद्धि किसी विशेष पक्ष अथवा आंशिक स्वरूप को ही व्यक्त करता है। परंतु यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अभिवृद्धि तथा विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक दूसरे के पूरक तथ्य हैं। दूसरा, समान प्रारूप नहीं। अभिवृद्धि के विकास का प्रारूप समान नहीं होता। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। प्रत्येक बालक की अभिवृद्धि भिन्न होती है। विकास के पदों में समानता पाई जाती है, परंतु इसकी दर, सीमा तथा भिन्नता में अंतर होता है। अभिवृद्धि पर वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव पड़ता है। अभिवृद्धि पर यह प्रभाव लाभप्रद है अथवा हानिप्रद, यह वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और परिपक्वता के विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है। तीसरा, व्यवस्थित पद। जहाँ तक विकास का संबंध है, वह एक व्यवस्थित पहलू है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक शारीरिक परिवर्तनों एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा उद्दीप्त परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। एंडरसन ने विकास को शारीरिक परिवर्तन ही नहीं माना, अपितु वह इसे संरचना यानी कि स्ट्रक्चर एवं प्रकार्य यानी कि फंक्शन को समन्वित करने की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। विद्यालय की अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल। शिक्षा विकास की सशक्त प्रक्रिया है। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 ने अपने आरंभ के वाक्य में उल्लेख किया है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा है। कक्षा विकास इकाई है और विद्यालय समाज और राष्ट्र की इकाई है। इस प्रकार विद्यालय अपना विकास करके ही राष्ट्र की इकाई है। इस प्रकार विद्यालय अपना विकास करके ही राष्ट्र का विकास करता है। विद्यालय से तात्पर्य उसके प्राचार्य, शिक्षक, छात्र तथा कर्मचारी होते हैं। इसके बिना विद्यालय का अस्तित्व नहीं होता है। छात्रों और शिक्षकों का विकास ही विद्यालय विकास के प्रकट करता है। आज संस्थाओं के आकलन के लिए शिक्षकों के वृत्तिक निष्पादन तथा छात्रों की शैक्षिक निष्पत्तियों को महत्व दिया जाता है। विद्यालय प्रबंधन का लक्ष्य छात्रों का मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भावात्मक विकास करना है। विद्यालय की अभिवृद्धि तथा विकास के लिए निम्नलिखित पक्षों अथवा क्षेत्रों को महत्व दिया जाता है। पहला, छात्रों की अभिवृद्धि एवं विकास। दूसरा, शिक्षकों की अभिवृद्धि एवं विकास। तथा तीसरा, विद्यालय की अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं प्रारूप का विवेचन उपरोक्त पंक्तियों में किया जा चुका है। यह दोनों शब्द मनोविज्ञान के हैं। दोनों का उपयोग साथ साथ ही किया जाता है, परंतु इसमें अंतर है। विद्यालय की अभिवृद्धि तथा विकास उक्त तीन पक्षों का विवरण निम्नांकित पंक्तियों में किया गया है। पहला, छात्रों की अभिवृद्धि एवं विकास। छात्रों को विद्यालय की कक्षा में 10 से 12 वर्ष तक रहना होता है, जिसमें उनकी तीन अवस्थाएं बालक, किशोर तथा प्रौढ़ावस्था का आरंभ हो जाता है। यह अवस्था सीखने की तथा विकास की होती है। आयु के बढ़ने के साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक विकास होता है। यह जीवन की रचना अवस्थाएं होती हैं, इसलिए विद्यालय की शिक्षा में छात्रों की अभिवृद्धि तथा विकास को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी क्रियाओं को आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों का अधिकतम विकास हो सके। इस प्रकार में विद्यालय में दो प्रकार की क्रियाओं का आयोजन किया जाता है, अ पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम, करिकुलम प्रोग्राम्स, तथा दूसरा पाठ्य सहगामी कार्यक्रम, को करिकुलर प्रोग्राम। इनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। पहला, पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम, करिकुलर प्रोग्राम। विद्यालय में पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम का प्रमुख महत्व होता है। इन कार्यक्रमों से शैक्षिक विकास होता है। इन कार्यक्रमों का नियमित रूप से मूल्यांकन होता रहता है। इन कार्यक्रमों से ज्ञानात्मक पक्ष का अधिक विकास होता है। विद्यालय के कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रमों को प्रधानता दी जाती है, जिससे छात्रों का मानसिक विकास होता है। ब पाठ्य सहगामी कार्यक्रम, को करिकुलर प्रोग्राम। शिक्षा संस्थाओं के कार्यक्रम से बालकों का बहुमुखी विकास होना चाहिए, जिससे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विकास होना चाहिए। भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन से किया जाता है। विद्यालय में खेलकूद, एनसीसी, स्काउटिंग तथा प्रतियोगिताओं के आयोजन से शारीरिक तथा क्रियात्मक पक्ष का विकास किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, विद्यालय दिवस आदि के आयोजन से भावात्मक पक्ष का विकास होता है। विद्यालय के पाठ्यक्रम में कुछ विषयों, इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र में शिक्षण से भी राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जाता है। विद्यालय के पाठ्यक्रम संबंध तथा पाठ्य सहगामी कार्यक्रम छात्रों के विकास में सहयोग करते हैं, जिससे छात्रों का बहुमुखी विकास किया जाता है। विद्यालय में साधारणतः शैक्षिक पर्यटन की व्यवस्था की जाती है, जिससे ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा तथ्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन का अवसर मिलता है, जिससे छात्रों को उन तथ्यों का शुद्ध ज्ञान होता है तथा भावात्मक पक्ष भी विकसित होता है। विद्यालय प्रबंधन के नियोजन, संगठन, प्रशासन तथा पर्यवेक्षण में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे बालकों का बहुमुखी विकास हो सके। नियंत्रण पक्ष में इनका आकलन तथा मूल्यांकन करना चाहिए। साधारणतः विद्यालय में परीक्षाओं से छात्रों के ज्ञानात्मक उपलब्धियों का ही मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा, शिक्षकों की अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। शिक्षा संस्था की स्थापना छात्रों के विकास हेतु की जाती है, परंतु शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों का वृत्तिक विकास होता है। जब शिक्षक कहता है कि शिक्षण के 20 वर्ष का अनुभव है, इसका अर्थ होता है कि शिक्षण वृत्ति को 20 वर्ष से सीख रहा है, जिससे शिक्षक का वृत्तिक विकास हो रहा है। प्राचार्य द्वारा विद्यालय में शैक्षिक वृत्ति विकास के लिए कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बालकों, शिक्षकों को नवीन विधियों, प्रविधियों की जानकारी हो सके। अभिविन्यास कार्यक्रमों के आयोजन से नवीन आयामों के विकास के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उन्हें अवसर भी देना चाहिए। छात्रों तथा शिक्षकों के आकलन को भी महत्व दिया जाने लगा है, क्योंकि छात्र शिक्षक के मूल्यांकन का सबसे उत्तम निर्णायक होता है। प्राचार्य द्वारा, साथियों, सहयोगियों तथा पर्यवेक्षक द्वारा भी शिक्षकों का आकलन करना चाहिए। यह जानकारी शिक्षकों को पृष्ठ पोषण देगी और वह अपने विकास प्रयत्न करेंगे। तीसरा, विद्यालय की अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल। छात्रों एवं शिक्षकों का विकास भी विद्यालय के विकास का सूचक होता है। विद्यालय के मुख्य घटक शिक्षक तथा छात्र होते हैं, इसका विकास भी विद्यालय का विकास होता है। परंतु विद्यालय का आकलन प्रणाली विश्लेषण द्वारा भी किया जाने लगा है, कि जिससे विद्यालय की कार्य प्रणाली का आकलन होता है तथा कमजोरियों का निदान होता है। इससे उनमें सुधार किया जा सकता है, जिससे विद्यालय के विकास में सहायता होती है। इसके अतिरिक्त विद्यालय के विकास का बोध इससे होता है कि गत वर्षों में विद्यालय का स्तर कितना उठा है, और जैसे हाई स्कूल से इंटर कक्षाएं आरंभ हुई हैं, कला विषयों से विज्ञान विषयों की सुविधा हुई है, इसके बाद वाणिज्य विषयों की मान्यता प्राप्त की गई, कंप्यूटर तथा कृषि विषयों को आरंभ करने का प्रयत्न किया जा रहा है, गत वर्षों के परीक्षा फलों में कितनी वृद्धि हुई है, छात्रों के प्रवेश संख्या में वृद्धि होना तथा शिक्षकों की संख्या में वृद्धि होना आदि विद्यालय विकास के मानदंड होते हैं। इस प्रकार एक प्राचार्य का उत्तरदायित्व इतना ही नहीं होता कि विद्यालय के कार्यक्रमों का संचालन करता रहे, अपितु विद्यालय के विभिन्न पक्षों के विकास की ओर प्रयत्नशील रहे। विद्यालय की अभिवृद्धि तथा विकास के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला, छात्रों की अभिवृद्धि एवं विकास, दूसरा शिक्षकों की अभिवृद्धि एवं विकास, तीसरा विद्यालय की अभिवृद्धि एवं विकास। इसके अंतर्गत अगत वर्षों के परीक्षा फल व छात्रों के विद्यालय में प्रवेश की वृद्धि, स्व विद्यालय में नए कमरों का निर्माण, द विद्यालय के स्तर में अभिवृद्धि या विद्यालय के नए अध्ययन विषयों में वृद्धि, र विद्यालय में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि तथा ल विद्यालय के शिक्षकों का वृत्तिक विकास, चौथा विद्यालय के आकलन में प्रणाली विश्लेषण का उपयोग और निदान के आधार पर सुधार एवं विकास, पांचवा विद्यालय की शैक्षिक वातावरण विकास, पुस्तकालय में आधुनिक साहित्य की उपलब्धता, छठवां विद्यालय में वैज्ञानिक विषयों में प्रयोगशालाओं की समुचित व्यवस्था तथा पर्याप्त उपकरण तथा अन्य सामग्री, सातवां विद्यालय की भौतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण की गुणवत्ता, विद्यालय का स्वास्थ्य हेल्थ ऑफ स्कूल, विद्यालय का स्वास्थ्य शिक्षा प्रबंधन का नया प्रत्यय है क्योंकि विद्यालय के कार्यक्रमों से छात्रों को स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना है। विद्यालय के उपरोक्त सभी घटक मिलकर विद्यालय के स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। यदि सभी घटकों का समुचित विकास हो तो एक स्वस्थ विद्यालय का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए एक प्राचार्य को विद्यालय को स्वस्थ रखने तथा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अधिगम अभ्यास लर्निंग एक्सरसाइज, पहला प्रबंधन में समन्वय का अर्थ बताइए तथा शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र बताइए, समन्वय के प्रमुख क्षेत्र बताइए, दूसरा समन्वय के कारक तथा अवस्थाओं को बताइए, प्रबंधन में समन्वय की क्रियाओं हेतु सुझाव दीजिए, तीसरा अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ बताइए, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर को उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए, चौथा विद्यालय की अभिवृद्धि एवं विकास के क्षेत्रों को बताइए, विद्यालय के विकास एवं अभिवृद्धि के आधार बताइए, पांचवा विद्यालय अभिवृद्धि का अर्थ लंबवत विकास से है और विकास से तात्पर्य विद्यालय के विस्तार से होता है, विद्यालय का स्वास्थ्य का अर्थ बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला समन्वय की प्रबंधन में आवश्यकता बताइए, दूसरा समन्वय की अवस्थाओं को बताइए, तीसरा विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए, चौथा विद्यालय की अभिवृद्धि के लक्षण बताइए, पांचवा विद्यालय के विकास को उदाहरण से समझाइए। सत्य असत्य प्रश्न, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, पहला विद्यालय प्रबंधन में पारस्परिक संबंधों एवं व्यवहारों में समन्वय की आवश्यकता होती है, सत्य या असत्य, दूसरा समन्वय के अभाव में पारस्परिक तनाव होता है, सत्य या असत्य, तीसरा विद्यालय की अभिवृद्धि का अर्थ होता है विद्यालय का लंबवत विकास होना, सत्य या असत्य, चौथा विद्यालय के विकास का तात्पर्य होता है विद्यालय का शैक्षिक विकास करना, सत्य या असत्य, पांचवा विद्यालय की अभिवृद्धि एवं विकास में विद्यालय के स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, सत्य या असत्य, कुंजी पहले के लिए सत्य, दूसरे के लिए सत्य, तीसरे के लिए सत्य, चौथे के लिए सत्य और पांचवे के लिए भी सत्य। रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, पहला विद्यालय प्रबंधन में पारस्परिक संबंधों में रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, दूसरा पारस्परिक संबंधों में समन्वय से विद्यालय का रिक्त स्थान होता है, तीसरा विद्यालय में हाईस्कूल स्तर में इंटर कक्षाओं के आरंभ होने को रिक्त स्थान कहते हैं, चौथा इंटर कॉलेज में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ होने को रिक्त स्थान कहते हैं, पांचवा अभिवृद्धि तथा विकास को विद्यालय के रिक्त स्थान को प्रभावित करता है, कुंजी पहले के लिए समन्वय, दूसरे के लिए विकास, तीसरे के लिए अभिवृद्धि, चौथे के लिए विकास, पांचवे के लिए स्वास्थ्य। बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला विद्यालय में समन्वय से तात्पर्य होता है और पारस्परिक संबंधों में व पारस्परिक व्यवहार में स्व उपरोक्त दोनों में द उपरोक्त किसी में नहीं, दूसरा विद्यालय का संगठनात्मक वातावरण प्रभावित करता है और अभिवृद्धि का व विकास को स दोनों को ही द उपरोक्त किसी को नहीं, तीसरा विद्यालय में अभिवृद्धि से तात्पर्य होता है और विद्यालय का विस्तार व लंबवत विकास स शैक्षिक प्रगति द उपरोक्त सभी, चौथा विद्यालय में विकास से तात्पर्य होता है और शिक्षकों की कार्यकुशलता व छात्रों की उपलब्धियां सब विद्यालय में उच्च कक्षाओं का संचालन द उपरोक्त सभी, पांचवा विद्यालय की अभिवृद्धि एवं विकास का प्रभाव पड़ता है और विद्यालय स्वास्थ्य व विद्यालय संगठनात्मक वातावरण सब विद्यालय का शैक्षिक स्तर द उपरोक्त सभी पर, कुंजी पहले के लिए स, दूसरे के लिए स, तीसरे के लिए ब, चौथे के लिए द, पांचवे के लिए द।